evenement to this campaign, Khudavan ki yaad mein rehne se, hamesha zikr karne se kamyabi hoti hai, kyunki din raat ko hum jis tarah sochte hain, jis tarah hum काल करते हैं और जिस तरह हमारे अमाल होते हैं उसके नतीजे के मुताबिक सुबह की इबादत अंजाम पाती है, वो नताइज उसमें मुखिल हो जाते हैं, वो नताइज उससे नूरानी इबादत में असरअंदाज हो जाते हैं। ये आपके नोटिस में रहे, ये आपके ख्याल में रहे, ऐसा नहीं कि जो आप उस एक घंटे के अंदर चाहें वो हो पाए, कभी दखल है जो आप चौबीस घंटे के अंदर करते हैं आपके अमाल जैसे ही वैसी इबादत हो पाएगी। इसके लिए आप अगर रूहानी तरक्की चाहते हैं तो हमेशा नेक ही करें और नेक बने और दिल में नेक ख्याल को जागुदीन करें, फिर इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसके लिए आपको दाइम जिक्र होना है। दाइम जिक्र का मतलब यह है कि आप इस सुनी आजम के मोती को हमेशा मुंह में रखे, इसमें आजम एक पुर हिकमत मोती को मुंह में रखे, जबान के नीचे रखे, दिल में रखे, दिमाग में, यानी ये खुदावंद के मुबारक नाम को जारी व सारी रखे, हर वक्त उसको जापते रहे, हर वक्त उस नाम को बोलते रहे, करते रहे, चली भी खफी भी जाहिर भी बातिन भी, और हर सूरत में हर तौर से उस मुबारक नाम को याद करें, फिर इसके नतीजे में इसकी बरकत से आपका जो जिक्र है वो आगे बढ़ेगा और वो पूर रौनक होगी, उससे लिज्जत और खुशी महसूस होने लगेगी और उस लिज्जत और खुशी के असर से आप जिक्र में बाकायदा रहेंगे और रोज बरोज आपका जिक्र आगे से आगे बढ़ेगा। एक दिन आपको रोशनी देखना नसीब होगा और फिर जब आप रोशनी देखेंगे तो बहुत ही प्रसन्न और सादमान हो जाएंगे, बहुत ही खुशी आपको होगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये काम आगे से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हिम्मत दरकार है, ताकदीरी चाहिए, पाकीज़गी चाहिए, तक़वा और नेकी, मोमिनी की सिफात दुनिया में भी दो शख्स आपस में दोस्ती उस वक्त कर सकते हैं जो कि वो किसी न किसी बिना पर आपस में मुनासिबत रखते हैं। अगर उनकी तबीयतें अलग अलग हैं तो दोस्ती कभी नहीं होती और उनमें कोई मुशाबिहत न हो, कोई रिश्ता न हो, या जबान का रिश्ता, या कौमियत का रिश्ता, या कस्ब हुनर का रिश्ता, कुछ भी तो रिश्ता होना चाहिए ताकि दोस्ती हो सके, इसके बगैर कोई दोस्ती नहीं होती। चुनांचे खुदा के साथ दोस्ती भी इस बिना पर हो सकती है कि खुदा की सिफात में से कुछ कुछ आप में मौजूद हूं, खुदा की खूबियों में से कुछ कुछ आप में पाई जाए, बड़े पैमाने पर नहीं, कुछ खूबियां, खुदा की खूबियां आप में पैदा हूं तो फिर खुदा के साथ दोस्ती हो। समंदर के साथ खतरे की दोस्ती हो सकती है, निर्दाल की कोई बात नहीं है, समंदर अजीम है और खतरा हकीर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान हमजिंसियत और रिश्ता पाया जाता है, वो भी पानी और ये भी पानी, वो अजीम है, बेपनाह है समंदर और ये बहुत छोटी मिकदार में है, इसकी कोई बात नहीं, दोस्ती होगी। घातक है, صادق ہے وہ رشتہ ایک ہے تو خطرے کی دوستی سمندر سے ضرور ہوگی. اس مثال پر اگر خداوند نور ہے تو آپ کے دل میں ایمان کی تھوڑی سی روشنی ہونی چاہیے, تو اس نور کے ساتھ اس روشنی کی دوستی ہوگی. اگر خداوند رحیم و رحمان ہے تو آپ کے دل کے اندر تھوڑا سا رحم شفقت میں بند ہونی چاہیے, تاکہ خداوند کی عظیم رحمت اور آپ کے تھوڑے سے رحم کہ آپ اپنی دوستی ہو. اسی طرح ہر صفت کی یہی مثال ہے کہ جو صفات خدا کی ہیں ان میں سے ایک چھوٹا چھوٹا نمونہ آپ نے ہونا چاہیے, تاکہ خدا کے ساتھ آپ کی دوستی اور محبت ہو. اگر ایسا نہ ہو, آپ کی صفات خدا کی صفات کے برخلاف ہوں, تو پھر کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ہے. پانی کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہوتی, تاریکی کے ساتھ روشنی کی دوستی کبھی نہیں ہوتی, امیری کے ساتھ غریبی کی کبھی دوستی نہیں ہوتی. یہ ضد ہے, اپوزٹ ہے. تو دو اپوزٹ چیزوں کی باہمی دوستی نہیں ہو سکتی ہے. اور جو نہ ہو, اسی معنی میں اسماعیلی مذہب کی تعلیم ہے کہ امام فرماتا ہے کہ تم آج میرے فرزند بن کر میری اطاعت کرو, تاکہ فردا قیامت میں میں تم کو اپنے بھائی کا درجہ عطا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بھی ایسا عظیم المرتبہ اور ایسا عالیشان ہو سکے گا جیسے امام ہے. امام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے, اور حدیث قدسی کا بھی یہی مطلب ہے. حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے, یا بنی آدم ادعنی اسألک مثلی حیا لا تموت وغنیا لا تفتقر وعزیزا لا تذل. اے ابن آدم, تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو اپنے مانند بنا لوں گا, ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا, ایسی امیری دوں گا کہ تو کبھی غریب نہیں ہو جائے گا, اور ایسا معزز بناؤں گا کہ تو کبھی ذلیل نہ ہوگا. اس میں مومن کے خدا کی صفات میں منتقل ہو جانے کا ذکر ہے. مومن کے خدا کی صفات میں منتقل ہو جانے کی بشارت ہے. کتنی خوشی کی بات ہے, کہاں وہ جنت جس کے معنی باقی ہیں, اور کہاں یہ فضیلت کہ خدا کے مرتبے تک کوئی پہنچے, خدا سے وہ حاصل ہو جائے. اس وقت اس کا شعور ایسا ہو کہ وہ خود کو خدا پائے, خود کو خدا دیکھے, خود کو خدا سمجھے. خدا دو نہیں ہو سکتے, کوئی خدا جو ازل اور ابد ہمیشہ قائم اور دائم. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک فائد کی حیثیت سے ہے, ہماری یہ زندگی روح کی گرفتاری ہے, اس شخصیت میں اس جسم میں یہ روح محبوس ہے, یہ روح قائد ہے, یہ روح گرفتار ہے, مبتلا ہے. اس کی نجات اس بات میں ہے, اس کا چھٹکارا इस अमर में है कि ये अपने खुदावंद की फरमान बरदारी वो इताअत करे, ताकि इस हदीस कुदसी के मुजिब इसको नजात इस तरह से मिले और इतनी बड़ी नजात मिले, इतना बुलंद रुतबा इसको अता हो कि ये खुदा के मर्तबे पर फाइज हो जाए, खुदा के मर्तबे पर फाइज हो जाए और इस जिंदगी को, इस सुफली जिंदगी को ख्वाब ख्याल समझे। जिस तरह एक इंसान ख्वाब के आलम में कहीं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है, क्या डरता है और वो इसी तरह मुसीबत में मुब्तला हो जाता है और बहुत उस पर दुख और रंज गुजरता है। इतने में यकायक पूछ झालता है इस खौफ के जोर से, इस वहशत से, इस हराज से पूछ झालता है। जागने के बाद एक तन से उसको खुशी का एहसास हो जाता है, वो शुक्र करता है कि अभी अभी खौफ के आलम में जो उसने कैफियत देखी थी, खौफ की कैफियत, तकलीफ की, रंज की, मुशक्कत की, गिरफ्तारी की, मरने की, बीमारी की, वो उसका ख्वाब था, तो शुक्र करता है। वो कहता है कि अगर बीदारी में मेरा ये आलम होता तो फिर मुझ पर क्या गुजरता। कहता है कि शुक्र है कि मेरी मुसीबत ख्वाब ही में खत्म हो गई। इसी तरह मोमिन की अना जब खुदा की वादानियत में मुंतकिल हो जाएगी तो वही इसकी हकीकी बहिश्त होगी और सबसे बड़ी बहिश्त, सबसे बड़ी जन्नत, इससे बढ़कर कोई जन्नत नहीं। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद हुआ है कि वरिज़वानुल्लाह अकबर, बहिश्त है क्यों नहीं, आज जन्नतें हैं लेकिन इन सब से बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी, यानी अल्लाह की मर्जी पर छोड़ना कि वो जो चाहे मोमिन के लिए करे, ये बात सबसे बड़ी, जन्नत से भी बड़ी, इसको रिजवान कहते हैं। और वैसे रिजवान एक रिश्ते का नाम है जो आठ बिहिश्तों से ऊपर, या ये कि वो आठ बिहिश्तों का मालिक, उसका नाम रिजवान। बहरहाल खुदावंद तआला की खुशनुदी ही रिजवान है और वो ये खुशनुदी ही अजीम फरिश्ता है। तो दूसरों के लिए ये बातें अलग अलग है, हमारे नजदीक हिकमत में और तावील में सब बातें एक है। तावील में हकीकत में गुंजाइश है कि बहुत सी हकीकतें मिल जाए, क्योंकि कहा गया है कि हकीकत एक लाल की तरह है और जिसके कई कई पहलू हैं, यानी एक तराशा हुआ नगीन जो आपकी अंगूठी में होता है, उसके कई कई रुख होते हैं, कई कई पहलू होते हैं। तो इसी तरह जो ऊंची हकीकतें हैं उनके भी कई कई पहलू हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि रिजवान फरिश्ता है, रिजवान खुदावंद की खुशनुदी है और रिजवान बहिश्त से बढ़कर एक दर्जा है, ये सारी बातें एक ही।
इन तमाम बातों का मतलब एक है। मैं कह रहा था कि मोमिन की अना, मोमिन की खुदी, और जिस वक्त खुदा की हकीकत में मुंतकिल हो जाएगी तो ये मोमिन के लिए आखिरी नजात और यही छुटकारा है और यही हकीकत है। इसके लिए हम सबको दुआ मांगनी चाहिए कि रामदालिनी हमको जिंदगी में वो आली हिम्मती अनायत करे कि जिससे हम जिद्दोजहद करें और रूहानियत के रस्ते पर आगे बढ़ें, अपने जिक्र को कामयाब करें और ठीक तरह से इबादत कर सकें और इमाम की खुशनुदी को हासिल करें और सही माने में उसकी फरमान बरदारी करें और हमेशा उसकी खुशनुदी के मुताबिक काम करें और अपने दीन भाइयों और बहनों के लिए खैरखाही करें, उनकी भलाई और बेहतरी चाहें और हमेशा ऐसी मजालिस से फायदा उठाएं, इल्मी फायदा उठाएं, रूहानी फायदा उठाएं, अखली फायदा उठाएं और हम खुदावन की मारिफत में आगे बढ़ें और आला हकीकतों को समझ सकें और इस हकीकत को समझ सकें कि किस तरह हम अपनी अना को खुदा की हकीकत में मुंतकिल कर सकते हैं। इसी के लिए सबकी दुआ होनी चाहे और साथ ही साथ आप दुआ मांगी बोला के हुजूर से कि इस नेक घर के अफराद ने जिस तरह से एहतमाम किया है और जैसे इंसराम किया है इस मजलिस के लिए और इन्होंने जहनत खाजते हैं वो पूरी हो जाए, उनके सब गुनाहों को मौला बख्श दे, उनको सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रखे, उनके इल्म में इजाफा करे, उनके ईमान की रोशनी में इजाफा करे, उनके यकीन में इजाफा करे, उनको और ज्यादा आली हिम्मती और बुलंद हौसलगी अदा करे ताकि वो जमात की और इमाम की खिदमत कर सकें और इल्म की खिदमत कर सकें और मारिफत की खिदमत कर सकें। तो जिंदगी में इस मुकद्दस मजहब के अंदर जो गोहर हैं उनको चुन सकें और इनके मालजात को देख सकें और फिर इनको क़यामत में कोई अफसोस न रहे और इनको दुनिया जहां में खुदावंद कामयाबी अता करे, सुरखुरुई और सरबुलंदी अता करे और इनको दीदार जाहिर और दीदार बातिन की नावत से नवाजे और मारिफत की लाजवाब सल्तनत इन सबको अता हो। आमीन या रब्बिल आलमीन।